माँ तारा चंडी शक्तिपीठ सासाराम। देवी के 51 शक्तिपीठों में माँ तारा चंडी भवानी अपने आप में सर्व ऐश्वर्य और सुख प्रदान करने वाली महाविद्या बताई गई है, जो विद्वा पर्वत के कैमूल श्रृंखला में अवस्थित है। प्रजापति दक्ष के महायज्ञ में पति निंदा से क्रुद्ध होकर माँ देवी सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके उस शरीर को भगवान श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र से 51 खंडों में काट दिया और वे खंड भारत और उसके आसपास के विभिन्न स्थानों पर गिरे। उसमें से एक खंड अर्थात माँ सती का दक्षिण नेत्र यहाँ सासाराम में गिरा। जिस प्रकार मस्तक कटकर गिरने से वैष्णो देवी, जिह्वा कटकर गिरने से शारदा देवी, कमर कटकर गिरने से विघ्नवासिनी देवी, पैर कटकर गिरने से कलकत्ता की काली और कन्याकुमारी तथा ग्रहभाग गिरने से कामरूप कामाक्षा शक्तिपीठों की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार माँ तारा चंडी यह भी एक शक्तिपीठ है जहाँ माँ सती देवी के दक्षिण नेत्र की पतन की मान्यता है। आँखों को तारा भी कहते हैं। भगवती के 3 नेत्र माने गए हैं। बाया नेत्र रामपुर बंगाल में गिरा, जो तारापीठ नाम से विख्यात हुआ और यह अघोर साधक वामाखेपा के नाम से आज भी जाना जाता है। यह दक्षिण नेत्र सोनभद्र नदी के किनारे सटे हुए मनोरम पहाड़ियों से घिरे हुए प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में गिरा हुआ सोनभद्र नाम से आज भी जाना जाता है, जो महर्षि विश्वामित्र के नाम से और महर्षि विश्वामित्र ने इसी तारा का नाम से इसी स्थान को जागृत भी किया था। जमा अग्नि ऋषि के जो पुत्र रहे भगवान परशुराम, उन्होंने इसी क्षेत्र में राजा सहस्त्रबाहु को पराजित करने के लिए यहीं पर माँ भगवती तारा चंडी की उपासना की थी, जिससे प्रसन्न होकर माँ तारा चंडी ने बालिका के रूप में प्रकट होकर ऋषि को विजय का वरदान दिया था। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार महिषासुर के 2 सेनापतियों में से चंड और मुन में से एक का वध भगवती तारा ने यही अपने हाथों से किया था, जिससे वे चंडी नाम से विख्यात हुई और मुंड का वध यहीं से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम की ओर, जहां पर मुंडेश्वरी नाम से वह विख्यात हुई और वह स्थान वर्तमान भारत में कैमूल जिले के अंतर्गत आता है। भगवान बुद्ध ने बोधगया से सारनाथ जाते समय अपने भक्तों के साथ 21 दिन यहीं पर रहकर भगवती तारा की पूर्ण उपासना की थी, जिसका उल्लेख मंदिरों के गर्भगृह में लगे पत्थर पर आप पाली भाषा में देख सकते हो। और यहाँ समीप ही पूरब गोड इला पहाड़ पर तारकनाथ नाम का स्थान है, जहाँ पर तारका नाम की राक्षसी एक समय रहती थी, जो कि विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में बराबर विघ्न व बाधा डालती थी। और उसी तारका का वध करने के लिए महर्षि विश्वामित्र अयोध्या के राजा दशरथ से उनके दोनों पुत्रों राम और लक्ष्मण को मांग कर लेके आए थे। और यहीं पर माँ तारा चंडी धाम में स्थित अपने आश्रम, कुछ लोग उस आश्रम को सिद्धाश्रम भी कहते हैं, उसी आश्रम में महर्षि विश्वामित्र ने दोनों ही कुमारों को प्रशिक्षित किया था। राम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा करते हुए राक्षसी तारका का इसी स्थान पर वध किया था और वह स्थान आज भी बक्सर नाम से प्रसिद्ध है। तारा चंडी मंदिर के निकट एक गुरुद्वारा में भी स्थित है और यहाँ गुरु तेग बहादुर अपनी पत्नी और भक्तों के साथ माँ तारा चंडी भवानी का पूजन किया करते थे। आज भी सिख संप्रदाय वहाँ जाकर 3 दिन ठहर कर अरदास, जल क्रिया और पूजा करते हैं। यहाँ पर वर्ष में 3 दिन गुरु महाराज की याद में गुरु ग्रंथ साहिब का राजभोग, अरदास और पाठ होता है। इस पूरे क्षेत्र को पहले कारूस प्रदेश नाम से जाना जाता था, जहाँ पर राजा हैयई वंशीय क्षत्रिय कार्यवीर नाम से विख्यात था। इसी कार्यवीर का पुत्र सहस्त्रबाहु एक प्रचंड प्रतापी राजा हुआ, जो माँ भगवती तारा चंडी का एक अनन्य भक्त और उपासक बना। माँ तारा चंडी भवानी सहस्त्रबाहु की कुलदेवी हुई और उस पूरे कारूस प्रदेश की भी कुलदेवी के रूप में आज भी वह प्रसिद्ध है, जिसका उल्लेख आपको रामायण में जरूर मिलेगा। श्रावण के महीने में सहस्त्रबाहु माँ तारा चंडी भवानी के विशेष रूप से पूजा करता और वह उत्सव भी बनाता। यह देखकर कारूस प्रदेश की जनता श्रावण मास में अपने अपने घरों में माँ तारा चंडी भवानी की पूजा के लिए प्रसाद, चढ़ावा, चुनरी, गाना बजाना आदि अनेक प्रकार के पूजन अर्चन करती और आज भी वह उत्सव मनाते हैं। यह परंपरा बन चुकी है और आज भी भारत में कायम है। और यह कारूस प्रदेश का क्षेत्र कर्मनाशा नदी से लेकर सोनभद्र नदी के बीच एक बहुत बड़ा विशाल भूखंड है जो पहाड़ों और जंगलों से बीच से बंधा हुआ है। एक आख्यान यह भी आता है कि एक बार राजा सहस्त्रबाहु जमाग्नि ऋषि के आश्रम में गए थे, जहां उन्होंने ऋषि की कामधेनु गाय बहुत पसंद आ गई थी। उसको उस गाय को बलपूर्वक ले लिया और जब यह बात जमाग्नि के पुत्र भगवान परशुराम को मालूम हुई तो वे क्रोध में आकर अपना परशु लेकर सहस्त्रबाहु से युद्ध करने निकल पड़े। युद्ध के दौरान परशुराम जी को सहस्त्रबाहु से कमजोर पड़ने लगे, तब वे सहस्त्रबाहु की कुल देवी माँ तारा चंडी भवानी की उपासना में उसी गुफा में बैठकर करने लगे। और उपासना के उपरांत माँ तारा चंडी भवानी ने परशुराम जी को एक चंडी बालिका के रूप में दर्शन दिया और विजय का वरदान दिया। तब माँ भगवती तारा चंडी की शक्ति पाकर परशुराम ने अपने परशु से ही सहस्त्रबाहु के बाहु काट दिए, क्योंकि परशुराम से परशु से और सहस्त्रबाहु से बाहु काटे थे। अतः सहस्त्रबाहु नाम से बाहु शब्द हटाकर और परशुराम के नाम से परशु शब्द हटा दिया गया और दोनों को संधि स्वरूप में आज यादगार बनाने के लिए नाम जोड़कर सहस्त्रराम अर्थात सहस्त्रराम इस नाम से यह क्षेत्र का नामकरण हुआ। कुछ समय में अर्थात कालांतर में अंग्रेजों को सहस्त्रनाम कहने में असुविधा होती थी, जिससे वे सहस्त्रराम अधिकतर कहते थे और आज यह क्षेत्र सहस्त्रराम नाम से प्रसिद्ध हो चुका है, जिस पर कुंड स्थान पर परशुराम ने माँ भगवती तारा चंडी की उपासना की थी और उस कुंड को परशुराम कुंड से भी जाना जाता है, जो माँ तारा चंडी भवानी के ठीक सामने ही स्थित है और भगवती के श्री चरणों को हमेशा पखारता है। आज भी इसी कुंड में अनेक भक्त स्नान कर माँ तारा चंडी भवानी का पूजन अर्चन करते हैं। और सहस्त्रबाहु की समाधि आज भी नगर के थाने के दक्षिण किनारे पर स्थित है। माँ भगवती ताराचंडी भवानी के साथ अनेक प्राचीन इतिहास जुड़े हुए हैं। माँ ताराचंडी भवानी के समीप ही भैरव चंडिकेश्वर महादेव का मंदिर है, जो सोनवागढ़ शिव मंदिर के नाम से आज भी विख्यात है। माँ ताराचंडी धाम में वर्ष में 3 बार उत्सव मनाया जाता है। पहला उत्सव जो वसंत नवरात्र में अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। दूसरा शारदीय नवरात्रि, यह उत्सव आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर दशहरा तक मनाया जाता है। और तीसरा उत्सव बड़े ही धूमधाम से आषाढ़ी पूर्णिमा, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के रूप में जानते हैं, उस गुरु पूजन से प्रारंभ होकर अगले दिन श्रावण की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। और माँ भगवती ताराचंडी को स्थानीय लोग कुल देवी के रूप में आज भी मानते हैं। और श्रावण मास में यहाँ महीने भर मेला लगा रहता है तथा पूर्णिमा को विशाल शोभा यात्रा आज भी निकलती है।